تفسیر سورت الفرقان مکی سورت ہے، اس کے 6 رکوع اور 70 آیات ہیں، کلمات کی تعداد 892 اور حروف جو ہیں وہ 3703 ہیں. الفرقان، پہلی آیت سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان، نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا. فرقان جو ہیں اس کے کیا معنی ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنا. اور قرآن کی اکثر سورتوں کی طرح الفرقان کا نام بھی علامت کے طور پر آیا ہے، نہ کہ عنوان مضمون کے طور پر. پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ پچھلی سورتوں کو ذہن میں رکھیں تو 14 مکی سورتیں جو تھیں وہ آئیں، تو اور اس کے بعد ایک سورت نور مدنی سورت آئی، اور اب جو ہے دوبارہ جو ہے وہ 8 سورتیں جو ہیں وہ مکی سورتیں آئیں گی، پھر سورت احزاب جو ہے وہ مدنی سورت جو ہے وہ آئے گی. اور اس سورت کا جو زمانہ نزول ہے یہ قیام مکہ کا درمیانی دور ہے، دور متوسط. اس کے موضوع جو ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، اس میں توحید کے دلائل دیے گئے ہیں. نمبر 2، آخرت. اور نمبر 3 جو ہے وہ قرآن مجید کی حقانیت پر، کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور حق ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اہل مکہ کے جو اعتراضات تھے، شبہات تھے، ان کو نقل کر کے اللہ رب العزت نے ان کا جواب بھی دیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اہل ایمان کی جو اخلاقی خوبیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے معیار کے طور پر سب کے سامنے رکھا ہے کہ دیکھیں کہ رسول اللہ پر ایمان لانے والوں کا کردار کیسا ہے اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے اوصاف کیسے ہیں. تو سوسائٹی یا معاشرے کے لوگ پرکھ کر فیصلہ کریں کہ پھر جو ہے وہ کون لوگ جو ہیں وہ اچھے ہیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، نہایت متبرک ہے. الذی، وہ جس نے، نزل الفرقان، نازل کیا فرقان کو، جس نے اتارا فرقان کو، علی عبدہ، اپنے بندے پر. کیوں اللہ تعالیٰ نے فرقان اپنے بندے پر نازل کیا؟ لیکون للعالمین، تاکہ وہ ہو جائے سارے جہان والوں کے لیے نذیرا، ڈرانے والا. اب آپ دیکھیے کہ سورت الفرقان جو ہے اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ اس میں توحید بھی ہے، آخرت بھی ہے، لیکن اس کا مرکزی مضمون قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا. کیوں؟ اہل مکہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، اور آپ کے بشر ہونے پر، نبی تو ہیں لیکن بشر ہیں، اس پر ان کو اعتراض تھا، اور وہ پھر کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ کا انکار اور پھر قرآن کا انکار. تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر 9 تک یہ بات اہل مکہ کو بتائی اور دنیا والوں کو بتائی کہ قرآن کا نزول سب سے بڑی برکت ہے، اور سب سے بڑی برکت والی ہستی کی طرف سے اس کو جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ بالکل ابتدا میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کس طرح سے بات کو شروع کیا، کہ تبارک الذی، نہایت متبرک ہے. اور یہاں پہ تبارک، جس کا مادہ بارا کاف ہے اور اسی سے لفظ برکت ہے، और इस मादे से जो बरका है दो मसदर निकलते हैं, एक तो बारा काफ्ता बरकत और दूसरा बुरूक। तो अगर इसका मसदर बरकत समझा जाए उससे इसके मानी देखे जाएं तो कसरत और ज्याती के मानी पाए जाते हैं, और अगर बुरूक से लिया जाए तो इसके अंदर जो है वो सबात और बिका उसका तसव्वुर जो है वो पाया जाता है। तो फिर इससे इसके मानी क्या हैं? गोया के अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर रहे हैं कि निहायत बरकत वाला है, निहायत मुतबर्रिक है। तो बरकत के मानी में खैर भी है और इसके अलावा जो है वो कमाल दर्जे की पायदारी पाई जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी जात पर जो है उसका तारुफ हासिल करो और अल्लाह की जात पर अगर मैं और आप गौर करें तो अल्लाह की जात वो जात है जो निहायत बाबरकत है, जो दूसरों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। कैसे फायदे? मतवक्को भी और गैर मतवक्को भी। और इसके अलावा जैसे कि तबारुक के लफ्ज में बुलंदी का मफहूम भी पाया जाता है, तकद्दुस का मफहूम भी पाया जाता है, तो अल्लाह ही की जात है जो निहायत बुलंद है, अल्लाह ही की जात है जो निहायत मुतबर्रिक है। तो किसी को खैर पहुंचाने में, भलाई देने में और किसी के बारे में ये कहना कि उसके पास ये चीज बड़ी फरावानी में है, उसकी इस चीज को दवाम हासिल है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से बढ़कर जो है वो दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। तो गोया के तबारुक के अंदर मुबालगा का मफहूम पाया जाता है। मानी क्या है? बड़ी ही बाबरकत और बाफैज हस्ती है। और चूंकि अल्लाह ताला बड़ी बाबरकत है, दुनिया को बहुत फायदे पहुंचाने वाली जात है, इसीलिए अल्लाह ताला ने लोगों के लिए, लोगों के डराने के लिए जो है वो एक फुरकान नाजिल किया, एक फुरकान उतारा। और ये फुरकान जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उतारा। तो फुरकान किसे कहते हैं? फारा काफ जो है इसके मानी है कि डराने वाला, हक और बातिल में फर्क करने वाला, है ना। तो नज़ल फुरकाना, और नज़ला जो है मानी क्या है इसके? थोड़ा थोड़ा करके बतदरीज जरूरियात के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो फुरकान नाजिल किया। तो फुरकान क्या है? हक और बातिल में फर्क करने वाला, तौहीद और शिर्क में फर्क करने वाला, अदल और जुल्म के दरमियान जो है वो फर्क करने वाला। तो गोया के अल्लाह ताला ने फुरकान नाजिल किया। तो फुरकान से मुराद क्या है? कुरान मजीद। अल्लाह ताला ने जो है वो इंसानों को, दुनिया को, लोगों को फैज कैसे पहुंचाया? फुरकान के जरिए। और फुरकान भी यहाँ पे मुबालगे का सीगा है, जिस तरह तबारका में मुबालगा पाया जाता है, बिल्कुल इसी तरह फुरकान भी मुबालगे का सीगा है। तो इससे मुराद क्या है कि कुरान मजीद। फुरकान क्या है? कुरान मजीद, फर्क करने वाला। और ये फर्क कैसे करता है? जैसे आप देखेंगे एक दिन की रोशनी होती है, एक रात की तारीकी होती है। तो जब दिन आता है तो बिल्कुल महसूस होता है कि अब जो है वो रात चली गई है और दिन आ गया है ना। तो बिल्कुल मुतजाद चीजों में जो फर्क होता है ना, इसी तरह जो है कुरान मजीद जो है उसने क्या किया? बता दिया, फर्क कर दिया लोगों, लोग जो शिर्क में डूबे हुए थे उनकी जिंदगी में और जो तौहीद परस्त थे उनकी जिंदगी में। कुरान मजीद ने हराम और हलाल के जो अहकाम थे उनको जुदा जुदा करके, एक तो होता है ना फर्क करना और एक होता है अलग करना, है ना। फिरका कौन होता है? फिर हाँ, वो भी होता है जो अलग हो जाते हैं। तो कुरान मजीद क्या करता है? अलग अलग करके, जुदा जुदा करके, वाजे वाजे जो है वो बताता है। जैसे आप देखें गजवाए बदर को यौमुल फुरकान कहा जाता है। तो गजवाए बदर का दिन क्या था? हक और बातिल के दरमियान एक फैसला कुन जंग की हैसियत रखता है। हक और बातिल के दरमियान जो है वो गजवाए बदर ने जो है वो फर्क कर दिया। तो यहां पर भी اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ بہت ہی فیض دینے والی، خیر کثیر سے نوازنے والی، اور خیر کثیر بھی کیسا؟ جس کو ثبات حاصل ہے، لزوم ہے، بقا ہے، یعنی خیر کثیر یا نفع یا فیض رسانی دیتا ہے، دیتا رہے گا، متوقع بھی اور غیر متوقع بھی. اور اس نے یہ کیا، الذی، وہ وہی تو ہے، نزل الفرقان، جس نے اتارا فرقان، اور فرقان نہیں کا، الفرقان ہے نا، جس نے فرقان کو نازل کیا. کس پر نازل کیا؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ رب العزت یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اپنے بندے پر. اہل مکہ اعتراض کرتے تھے، شبہ کرتے تھے، اور اہل مکہ جو تھے وہ حقارت سے یہ کہتے تھے کہ نبی جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، وہ ہماری ہی طرح کا بشر کیوں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا کتنا پیار ہے، میری کتنی محبت ہے، میری کتنی الفت ہے، میرا جو ہے وہ ایک خاص جو ہے وہ التفات ہے کہ میں نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا. گویا کہ اللہ کا بندہ ہونا یہ بہت اعلیٰ مقام ہے، بندگی کا مقام جو ہے یہ اعلیٰ مقام ہے. تو اللہ رب العزت نے جو بڑا ہی محسن ہے، جو نہایت باخیر ہے، جو نہایت بزرگ اور باعظمت ہے، نہایت مقدس اور منزہ ہے، نہایت بلند اور برتر ہے، اور کمال قدرت کے اعتبار سے بھی وہ بڑا برتر ہے، تو اس نے جو ہے وہ قرآن، گویا کہ فرقان جیسی عظیم الشان نعمت جو ہے اس سے نواز کر کیا کیا کہ بندے پر بہت بڑا احسان کیا، اور بندے سے بہت زیادہ الفت اور محبت کا جو ہے وہ معاملہ کیا ہے نا. تو جو یہ فرقان ہے، دو چیزوں کو الگ کرنا اور ایک ہی چیز کے اجزاء کا الگ الگ ہونا، دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں. تو گویا کہ قرآن اس طرح سے فرق کرتا ہے کہ فرق کرنے میں فارق ہے، کمال کے درجے کو پہنچا ہوا ہے نا. بعض لوگ بعض چیز کو اتنا نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں کہ بالکل جیسے کوئی کسوٹی ہے، جیسے کوئی ترازو ہے، جیسے کوئی فیصلہ کن جو ہے وہ معیار ہے فیصلے کا. تو قرآن مجید جو ہے دونوں اعتبار سے کہ الگ الگ اجزاء پر مشتمل ہے، یا پھر الگ الگ اوقات میں آنے والے جو قرآن کے اجزاء ہیں، دونوں اعتبار سے قرآن جو ہے نا وہ الفرقان ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. تو جب تک آپ تبارک کے معنی نہیں سمجھیں گے، فرقان کے معنی نہیں سمجھیں گے، تو آیت کی گہرائی جو ہے نا اس تک آپ نہیں پہنچ سکتے ہے نا. قرآن مجید میں سورۃ الفرقان کی ابتدا اس انداز میں ہوئی کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. تو تبارک کے اندر جو ہے وہ پانچ معنی پائے جاتے ہیں، پانچ معنی تبارک کے اندر. نمبر ایک، بڑا محسن اور نہایت باخیر. نمبر دو، نہایت بزرگ اور باعظمت. کیوں؟ اس لیے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی اسی کے لیے ہے نا. نمبر تین، نہایت مقدس اور منزہ. پاک، کس چیز سے پاک؟ شرک سے پاک. کوئی اس کا ہم نظیر نہیں ہے، ہم مثل نہیں ہے، اس کو اپنی جانشینی کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو نمبر دو تین کیا ہے؟ نہایت مقدس اور منزہ. نمبر چار، نہایت بلند اور برتر. وہ اتنا بلند اور برتر ہے کہ کوئی اور اس کے مرتبے کا ہے ہی نہیں کہ اس کے اختیارات میں شرکت کر سکے. جیسے اہل مکہ جو ہے وہ ایک بدو جو ہے وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گیا، تو اہل مکہ جو تھے تبارک تو کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ میں تم سے اونچا ہو گیا ہوں. تو کہنے لگا لوگوں کو تبارک تو علیکم، کہ میں تم سے اونچا ہو گیا ہوں. کیا مطلب؟ میں تم سے بزرگ ہوں، میں میری تمہاری نسبت عظمت ہے. تو چوتھے معنی کیا ہے؟ نہایت بلند اور برتر. کون ہے؟ اللہ تعالی ہے. پانچویں معنی کیا ہے؟ کمال قدرت کے اعتبار سے برتر ہے. کائنات کی جب چیزوں کو پیدا کیا تو ہر چیز को एक खास अंदाज में नपातुला बनाया, पैदा भी किया, और फिर किसको कितनी जरूरत थी, कितनी चीज चाहिए थी, तो कमाले कुदरत के एतबार से भी वो बरतर है, तो निहायत बाबरकत है। इसीलिए आप देखेंगी कि जब तर्जुमा करने वाले तर्जुमा करते हैं तो तबारुक का तर्जुमा क्या करते हैं, बहुत बाबरकत है, निहायत बाबरकत है, बड़ी बरकत है। और फिर दूसरे मानी नज़ला, और नज़ला जो है इसके मानी क्या है, बतदरीज, दर्जा बदरजा, थोड़ा थोड़ा करके। अब कुरान के बारे में अहले मक्का तो इतराज करते थे ना, एक ही दफा क्यों नहीं नाजिल कर दिया गया, है ना, नज़लतन वाहिदतन, एक ही दफा नाजिल क्यों नहीं अल्लाह ने किया। और वो ये भी कहते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, इनको कोई आके सिखा जाता है तो जितना सीखते हैं उतना ही सुनाते हैं ना, अगर एक ही दफा नाजिल होता तो पता चलता ये अल्लाह का कलाम है, तो वो ये एतराज करते थे। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, निहायत बाबरकत है वो जात, नज़ला, उसने उतारा थोड़ा थोड़ा करके, लोगों की जरूरियात हालात कितना कैसे कब चाहिए तो उसने नाजिल किया, थोड़ा थोड़ा करके अल फुरकान को नाजिल किया, कोई मामूली चीज नहीं नाजिल की। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि तबारुक एक लफ्ज के अंदर दो मसदर पाए जाते हैं, तो फुरकान का जो लफ्ज है ये भी मसदर है। और मसदर के बारे में आपको क्या बात बताई थी कि फेल के नाम को मसदर कहते हैं। मसदर के बारे में आप चार बातें याद रखें कि फेल के नाम को मसदर कहते हैं पर ये फेल नहीं होता। नंबर दो, मसदर में जमाना नहीं पाया जाता, क्योंकि जमाना किस में पाया जाता है, फेल में पाया जाता है। नंबर तीन, उर्दू में अगर आप इसका तर्जुमा करेंगी ना तो अमूमन ना, नून अलिफ ना का जो है वो इसमें नून अलिफ ना आता है। मसलन इस्तिग़फारुन, ये मसदर है और इसके मानी क्या है, बख्शिश तलब करना, है ना। आप ये तो नहीं इसका तर्जुमा करी ना इस्तिग़फारुन का कि बख्शिश तलब की, ये अगर आप ऐसे कहेंगी तो फिर ये फेल बन जाता है। इसी तरह तालीमुन, ये भी मसदर है, सिखाना। इसी तरह जो है वो इंजालुन, इंजाल, इंजाल जो है ये भी मसदर है, लेकिन अगर अंजला आएगा तो क्या है, फेल है। तो जो मसदर है वो सिर्फ काम का नाम होता है, जबकि फेल जो है वो काम के होने के साथ साथ जमाने को भी जाहिर करता है। तो यहाँ पे जो है वो तबारका, इसमें दो मसदर पाए जाते हैं, एक बरकत और बुरूक, और दूसरा जो है वो अल फुरकान, फुरकान जो है ये भी मसदर है, और इसके दो मानी हैं। एक मानी क्या है, दो चीजों को अलग करना, तो इस मानी से क्या है कि कुरान जो है वो हक और बातिल को अलग करता है, और या फिर इसके मानी क्या है, एक ही चीज के अज्जा का अलग अलग होना, है ना। तो फिर इसके मानी क्या है कि कुरान मजीद जो है ये अलग अलग अज्जा पर मुश्तमिल है, अलग अलग औकात में आने वाले अज्जा पर ये मुश्तमिल चीज है, जो अलग अलग जरूरियात और हालात के मुताबिक जो है वो नाजिल हुई। तबारक अल्लज़ी नज़ल अल फुरकान अला अब्दिही, और अब्द ऐन बा दाल, और अब के अंदर कितने मानी पाए जाते हैं, तीन मानी पाए जाते हैं माशाल्लाह। और वो तीन मानी आपने सूरत फातिहा में याद किए थे, और फातिहा में आपने क्या पढ़ा था, परस्तिज नअबुदु, उसमें अब के मानी पड़े थे, और एक मानी क्या है, पूजा और परस्तिश, है ना, परस्तिश करना, जैसे हिंदू करते हैं ना कि उनके जो भी वो बने हुए होते हैं, आइडल्स बने हुए होते हैं, जो बुत बने हुए होते हैं या स्टैचू, वो उनके आगे पूजा करते हैं ना, प्रस्तिश करते हैं उनकी। और दूसरे मानी क्या है, अतात इख्तियार करना, कहना मानना। और अतात करने का लफ्ज अगर आप बोलते हैं तो मानी क्या है कि माना कभी ना माना, लेकिन तीसरे इबादत के अंदर मानी पाए जाते हैं बंदगी के, गुलामी के, यानी ऐसी अतात करना कि फिर आप उसी के हो गए, है ना, उसने अपना बना के छोड़ दिया, क्या असीरी है, क्या रिहाई है ना। अब आपको यानी जब अल्लाह के बंदे बन गए तो अब इस्लाम की गोया के, इस्लाम जो है ना उसके खूंटी से हम सब बंध गए हैं, और इस्लाम की लिमिटेशन क्या है, वो रस्सी, जैसे एक जानवर नहीं होता किसी खोंटी से बांध दिया जाता है तो रस्सी उसको जितना जाने की इजाजत देती है ना, जानवर उतना ही जाता है। अगर रस्सी बहुत लंबी हो तो हरे के खेत में जाए, लेकिन रस्सी तो लिमिटेड होती है ना, महदूद होती है। तो इस्लाम जो है, इस्लाम की खोंटी से जब हम जुड़ गए, जब उससे हम बंध गए, तो इस्लाम की जो कवायदो जवाबित है, जो हलाल और हराम के अल्लाह ताला ने अहकामात नाजिल किए, जो जिंदगी गुजारने का तरीका दिया, तो ये एक रस्सी है ना, ये एक रस्सी है। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तो अब इस रस्सी के मुताबिक हमें इस बात का एहसास ही नहीं है कि हम बंधे हुए हैं या खुले हैं, क्या सीरी है क्या रिहाई है। उसने अपना बना के छोड़ दिया, अब तो अल्लाह के बंदे बन गए ना। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? अल्लाह के बंदे थे। और अल्लाह ताला कहते हैं कि ये अहले मक्का मजाक करते हैं, ये एतराज करते हैं, मैंने अपने बंदे पर कुरान नाजिल किया, वो अब्द था और वो अब्द है। जैसे कि आप देखें कि अब आज के मुसलमान भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलू कहते हैं, गुलू करते हैं। और वो क्या करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दियत के मकाम से उठाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, है ना। जैसे आप देखें कि यहूद ने क्या किया कि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा, और वो ये कहते थे कि अल्लाह ताला हजरत उजैर अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर हलूल कर गया है, हलूल कर लिया है, यानी उसके अंदर चला गया है, और हजरत उजैर अल्लाह का अवतार है। इसी तरह हिंदुओं में भी अवतार या हलूल का अकीदा पाया जाता है। नसारा क्या कहते थे? ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा, बल्कि इससे भी बढ़कर अल्लाह ही बना दिया, है ना। इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुझे मेरी हद से ऐसे ना बढ़ाना जैसे नसारा ने ईसा इब्ने मरियम को चढ़ा दिया। मैं तो अल्लाह का बंदा हूं, लिहाजा तुम यूं कहो अल्लाह का बंदा और उसका रसूल। ये बुखारी की रवायत है ना। लेकिन अफसोस कि इन सारी तंबीहात के बावजूद आज मुसलमानों में से भी कुछ लोग वही कर रहे हैं जो पहली उम्मतें करती रही। और वो मुसलमानों का अब एक तबका ऐसा है जो रसूल अल्लाह को कहता है नूरुन मिन नूरिल्लाह, वो अल्लाह का नूर है, और वो ये कहते हैं कि हम उनको जो है ना बंदा नहीं कह सकते। अल्लाह कह रहे हैं कि मेरा बंदा, और वो कहते हैं कि हम बंदा नहीं कह सकते। और उनका हाल ये है कि वो क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं कि रसूल तो वही है, यानी वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, यानी अल्लाह की जात जो अर्श पर जो है वो इस्तवा, यानी गोया के अर्श पर है, वही क्या है उतर पड़ा है मदीना में मुस्तफा होकर। इसी तरह सिर्फ रसूल अल्लाह के बारे में उनका ये अकीदा नहीं है, बल्कि जो नेक लोग हैं ना उनके बारे में वो कहते हैं कि अल्लाह उनमें हलूल कर गया। मसलन अब आप देखें कि इस तरह के किसी की तारीफ इस तरह से करना, जैसे बुजुर्गों के बारे में वो ये कहते हैं अपना अल्लाह मियां ने हिंद में नाम रख लिया ख्वाजा गरीब नवाज, है ना। तो इस तरह के बहुत से आपको यानी शेर भी मिलते हैं और बहुत से ऐसे कलमात और लोगों के जुमले भी मिलते हैं कि नहीं भी बहरहाल बेशक वो अब तो हैं लेकिन हम उनको जो है वो बंदा नहीं कह सकते, है ना। तो डिफरेंट तरीके से शैतान क्या करता है, ऐसे शकूक और शुभार डालता है कि लोग आज जो जो है वो रसूल अल्लाह को और अल्लाह को और कुरान को मानने वाले हैं, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दियत का इनकार करते हैं। और अहले मक्का भी तो यही कहते थे। तो कुरान के आगाज में यानी गोया के सूरत अल फुरकान के आगाज में अल्लाह ताला ने कहा कि मुतबरिक है वो जात जिसने अपने बंदे पर, ये नहीं कहा कि फरिश्ते पर, ये नहीं कहा कि वो कोई खास और चीज थी, बल्कि अपने बंदे पर अल फुरकान नाजिल किया। अब आगे ये बताया जा रहा है कि जब बंदे पर फुरकान नाजिल किया तो नाजिल करने का मकसद क्या था, लियकून लिल आलमीन नजीरा, ताकि सारे जहान वालों के लिए नजीरा हो जाए। और नजीरा जो है इसके मानी क्या है, खबरदार करने वाला, मुतनब्बे करने वाला, गफलत और गुमराही के नताइज से डराने वाला। अब आप देखें कि नजीरा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक होता है डाकू जो डराता है और एक गनमैन जो गन दिखा के किसी को डराता है, लुटेरा है, और एक है रसूल के लिए नजीरा डराना। तो ये उस डराने को कहते हैं जिसमें मोहब्बत और शफकत होती है। जैसे माँ बाप भी बच्चों को डराते हैं ना, लेकिन उनके डराने में मोहब्बत और शफकत होती है। तो यहाँ पर जो है वो क्या कहा कि अल्लाह ताला ने जो अल फुरकान अपने बंदे पर नाजिल किया तो उसका मकसद क्या था, सारी दुनिया वालों के लिए, लिल आलमीन, है ना। तो आलमीन ये जमा है, अगर होता आलिम इल्म रखने वाला, और अगर यहाँ पे क्या है आलम, आलम की जमा है आलमीन, तो एक दुनिया नहीं, जितनी दुनिया है, जितने लोग हैं, सब के लिए कुरान क्या है, नजीरा है। तो नजीरा के दो मानी हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि फुरकान से मुराद वो बंदा जिस पर कुरान नाजिल किया गया, फुरकान नाजिल किया गया, तो नजीरा के लिए, यानी ये नजीर कौन है, अल फुरकान है, कुरान मजीद है कि वो लोगों को डराता है। दूसरी राय ये है कि इससे मुराद जो है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि कुरान में बार बार अल्लाह ताला ने कहा है ना कि मैंने जो है जितने भी रसूल भेजे, और फिर खासतौर पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि उनको अल्लाह ताला ने जो है वो नजीर बनाकर जो है वो भेजा। तो इससे क्या बात पता चलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत भी आलमगीर है, आप तमाम इंसानों के लिए और जिन्नों के लिए हादी और रहनुमा और नजीर बनाकर भेजे गए। जैसे सूरत अल आराफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो फरमाते हैं, या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, तो ऐ इंसानों मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, सूरत अल आराफ आयत 158। इसी तरह सूरत अल अनाम आयत 19 में क्या कहा, वउहिया इलैया हाज़ल कुरआन लिउनज़िरकुम बिही वमन बलग, मेरी तरफ ये कुरान भेजा गया है ताकि इसके जरिए से मैं तुमको खबरदार करूं और जिस जिसको भी ये पहुंचे, यानी तुमको भी और फिर जिस जिसको भी ये पहुंचे। फिर इसी तरह सूरत सबा आयत 28 में कहा, वमा अरसलनाक इल्ला काफ्फतन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। फिर जो है वो सूरत अंबिया आयत 107 में क्या कहा, वमा अरसलनाक इल्ला रहमतन लिलआलमीन, तो रसूल जो हैं वो क्या है, वो नजीर हैं। फिर आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस में भी बार बार इस बात को बयान किया, एक मौके पर आपने फरमाया मैं काले और गोरे सब की तरफ भेजा गया हूँ। फिर आपने कहा पहले एक नबी खास तौर पर अपनी ही कौम की तरफ भेजा जाता था और मैं आम तौर पर तमाम इंसानों की तरफ भेजा गया हूँ, ये बुखारी की रवायत है, बुखारी और मुस्लिम की। फिर इसी तरह इमाम मुस्लिम की रवायत है, आपने फरमाया मैं सारी खलकत की तरफ भेजा गया हूँ और खत्म कर दिए गए मेरी आमद पर अंबिया। तो यहाँ पर जो है नजीरा दो मानी में है, एक तो ये कि कुरान मजीद सारी दुनिया के लिए जो है वो नजीर है, डराने वाला है, और आप देख लें जितनी बाकी किताबें हैं वो मिट चुकी हैं या उनके अंदर अमेजिश हो चुकी है, लोगों का कलाम उसके अंदर जो है वो शामिल हो चुका है, लेकिन जो है वो कुरान मजीद ऐसी दौलत है और ऐसी नेमत है कि कुरान मजीद जो है ये अल्लाह की तरफ से है, और इसके अल्फाज जो हैं और इसका कलाम जो है वो आज भी जो है वो महफूज है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अगर दुनिया वालों के लिए डराने के लिए हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उसवा जो है वो आज भी हम सबकी जो है वो रहनुमाई करता है। तो ये है इसके मानी कि निहायत मुतबर्रक है वो जिसने ये फुरकान अपने बंदे पर नाजिल किया, गोया के रसूल पर कुरान मजीद को नाजिल किया, और ताकि वो सारे जहान वालों के लिए जो है वो नजीर हो। कुरान मजीद भी नजीर है और खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जात है, जो आपकी रिसालत है, वो तमाम दुनिया के लिए और अपने जमाने के लिए नहीं, आने वाले तमाम जमानों के लिए जो है वो नजीर है। फिर इसके बाद जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्दि वलम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्कि व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा। ये जो सूरत अल फुरकान की आयत नंबर 2 है, ये बड़ी ही अहम आयत है। ये क्यों बड़ी अहम आयत है कि इस एक आयत में तौहीद की पूरी तालीम जो है ना वो समेट कर रख दी गई। ये कुरान मजीद की जामे तरीन आयात में से एक अजीम शान आयत है। इसके अंदर इसके चंद अल्फाज में इतना बड़ा मजमून जो है वो समो दिया गया कि पूरी एक किताब भी उसकी वसतों का अहाता नहीं कर सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो एक मौके पर फरमाया, और आपका मामूल क्या था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि हुजूर के खानदान में जब किसी बच्चे की जबान खुल जाती थी तो आप ये आयत उसे सिखाते थे। इससे क्या बात पता चलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो जब कोई बच्चा बोलने लगता, जब उसके अंदर जो है वो बात करने की जो है वो ताकत और कुदरत पैदा हो जाती, सलाहियत पैदा हो जाती, तो आप क्या करते कि उसको जो है वो ये आयत नंबर 2 जो थे सूरत अल फुरकान की सिखाया करते थे। तो ये आपका मामूल था। तो ये आयत नंबर 2 हमें भी अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, क्योंकि तौहीद का पूरा तसव्वुर बिठाने के लिए ये एक बेहतरीन आयत है। तो जब हमारे बच्चे भी थोड़ा होशियार होने लगे तो आगाज में ही, शुरू ही में ही इनके जहन में तौहीद के नकूश जो है वो सब कर देने चाहिए, उनके जहन में बिठा देने चाहिए। तो आइए इस आयत नंबर 2 को समझते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, क्या बताया, अपना तारुफ करवा रहे हैं, तौहीद का तसव्वुर दे रहे हैं, कह रहे हैं अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, वही तो है अल्लज़ी, वो जात, लहू उसी के लिए, किसके लिए, अल्लाह के लिए, मुल्कु समावाति वल अर्द, बादशाही है आसमानों की और जमीन की। मुल्क के मानी मालिक के भी हैं और इसके मानी जो है वो बादशाही के भी हैं, कि वो जात जिसकी फैज बख्शी की तरफ अल्लाह ताला ने इशारा किया था। फैज बख्शी की तरफ इशारा क्या किया, कहां किया था, तबारक अल्लज़ी नज़ल अल फुरकान, तबारुक फैज देने वाला और कमाल कुदरत रखने वाला और मुकद्दस और बुजुर्ग। तो उसने जो अल फुरकान नाजिल किया, तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं वो कोई मामूली जात थोड़ी है। अब यहाँ पे आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला अपनी तौहीद, अपनी किब्रियाई, अपनी यकताई का हवाला दे रहे हैं। कोई और है जिसकी इस कायनात में बादशाही हो, कोई है जो दुनिया के लिए अंजार और तस्कीर के लिए कुरान मजीद जैसी किताब को नाजिल करे। अहले मक्का कुरान जैसी 10 सूरतें तो छोड़, एक सूरत भी जो है वो उतार ना सके, है ना, मजाक करते थे, एतराज करते थे, लेकिन जो है वो इसका मुकाबला ना कर सके। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुरान जो है वो किसी साइल की दरख्वास्त नहीं है, कुरान कोई मामूली किताब नहीं है, खालिके कायनात का ये फरमान है और ये वाजिबुल इज़ान है। अगर मैं कहूँ वाजिबुल इज़ान है तो आप क्या मानी कहेंगे, इज़ान के क्या मानी है, मुती और फरमा बरदार होना, और ऐसा मुती होना जैसे कि ऊंटनी। आप ये बात पढ़ ही चुकी कि आसानी से फरमा बरदारी, अतात के साथ आजी और इनकसारी। आप सूरत नूर में आयत 49 में मुज़ेनीन लफ्ज पढ़ चुकी, और मुज़ेनीन क्या है, सर झुका देना, है ना, सर झुका देना। जिस तरह एक ऊंटनी होती है वो अपने मालिक की अतात करती है, खा छोटा सा बच्चा उसको खड़ा कर दे तो खड़ा हो जाती है, खड़ी हो जाती है, बिठा दे तो बैठ जाती है। कितना अजीमुल जुस्सा जानवर है ना, लेकिन कितना जो है वो अतात करने वाला है। तो यहाँ पे भी क्या है कि कुरान मजीद जो है खालिक कायनात का फरमान है, अहकामात है उसके जो वाजिब है, और किस तरह से वाजिब है कि वाजिबुल इज़ान। और आप यूं भी कह सकती हैं कि कुरान मजीद जो है इस पर हम सबको जो है वो अमल करना है, गुंजाइश नहीं है कि इनकार कर सकें। कैसे पता चला कि गुंजाइश नहीं है कि इनकार करे कर सके, अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, उस रब ने इसको नाजिल किया जिसके हाथ में आसमानों और जमीन की बादशाही है। तो ये जो बादशाही का लफ्ज استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پر, اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ مکمل اقتدار رکھنے والی ہے, اس کے پاس بڑے اختیارات ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ جس کے پاس اختیارات ہوں, جو کمال درجے کی جس کی بادشاہی ہو, تو جس کا اقتدار اور اختیار جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ ہو, تو پھر کیا ہوتا ہے, کس کی مجال کہ اس کا انکار کر سکے. اور جس کا اقتدار اعلیٰ ہے تو کوئی اس کا شریک بھی نہیں ہے, ہے نا, تو ساری چیزیں اس کی مملوک ہیں اور وہ ان سب کا مالک ہے. یہ جو ملک ہے نا, اللہ کے پاس جب بادشاہی ہے وہ ملک اسی کا, تو مالک اللہ, تو میں اور آپ کیا بنے, مملوک. آپ یاد رکھیے گا, اللہ کی جو ہر صفت ہے نا, اللہ کی جو صفت ہے وہ اللہ کا نام بن گیا, اور ہر صفت جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ ہم سب پر ایک فرض کو عائد کر دیتی ہے. کیسے, اللہ خالق ہے, اس نے تخلیق کی پوری کائنات, اور ہم سب کیا ہیں, اللہ کی مخلوق. اللہ مالک ہے پوری کائنات, اس کا ملک, اس کی بادشاہت, اور ہم سب کیا ہیں, مملوک. اللہ تعالی جو ہے وہ جیسے مالک ہے, اس نے ہم سب کو اپنی ملک بنایا ہے, اور ہم سب اس کے پروردہ ہیں, مملوک ہیں. اسی طرح آپ ایک ایک صفت کو لیتی چلی جائیں, تو ہر اللہ کی خوبی, ہر اللہ کا نام, اللہ کی ہر صفت مجھ سے اور آپ سے ایک تقاضا کرتی ہے, جو میرا اور آپ کا ہوم ورک ہے, جو عمل کا اصول ہے. اللہ حاکم ہے, حاکم, اس نے کیا کیا, حکم, پورے قرآن مجید میں اپنے احکام نازل کر دیے, اور ہم سب کو اپنا محکوم بنایا. محکوم کیسے بنے, جیسے قرآن کہتا ہے. مملوک کیسے بنے, جیسے قرآن کہتا ہے, جیسے انبیاء تھے, جیسے عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو بظاہر یہ آیتیں بڑی آسان ہیں, لیکن یہ بڑی مشکل ہیں, لیکن یہ بڑی آسان ہیں اگر توحید سمجھ میں آ جائے, اگر اپنی حیثیت سمجھ میں آ جائے, اپنی حقیقت سمجھ میں آ جائے, کائنات کی حقیقت, اللہ کا تعارف سمجھ میں آ جائے, تو پھر یہ بہت آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے الفرقان نازل کیا, تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق ساری دنیا کے لیے اس کو نذیر بنا کر بھیجا, اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر بنا کر بھیجا, اے اہل مکہ, اے دنیا والو, کیا تم نے اس ذات کو معمولی ذات سمجھ لیا, الذی لہ ملک السماوات والارض. اب آپ دیکھیں, اللہ تعالیٰ اپنی بخشش, اپنی عنایتوں, اپنے کمالات, اپنی قدرت, اپنی بزرگی, اپنی عظمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ وہی تو ہے, الذی لہ, وہی تو ہے جس کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہی. اتنا بزرگ کے تھوڑی جگہ کی بادشاہی نہیں, اہل مکہ کے پاس تھوڑی سی مکہ کی سرداری آ گئی تو اپنے آپ کو انہوں نے خدا بنا لیا. اور وہ کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم مکہ کے سردار ہیں نا. اور جو ہے فرعون کیا کہتا تھا, وہ کہتا تھا میں ہوں اس دنیا کا خدا یا بادشاہ, خدائی کا دعویٰ کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی لہ ملک السماوات والارض, یہ وہ ذات ہے جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے, تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے, اس کا ملک بنا جائے. جب آسمان اور زمین کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی ملک ہے اور وہ اللہ کی اطاعت میں ہے, تو میں اور آپ اللہ کی ملکیت کیوں نہیں بنتے, میں اور آپ اللہ کے مملوک کیوں نہیں بنتے, پھر میں اور آپ جو ہیں وہ شرک کیوں کریں, پھر اپنی مرضی کیوں کریں, پھر میں اور کبھی خواہشات نفس, کبھی رسم و رواج جو زمانے کے ہیں, اور کبھی دوستوں کا پیئر پریشر, تو اس میں پھر میں اور آپ کیوں آ جائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کے پاس آسمان و زمین کی بادشاہی ہے, وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا, اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا, یعنی کسی سے اس کا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے. اب کیا تھا کہ مثلاً اہل مکہ نے بھی کیا کیا تھا کہ خود ہی انہوں نے بہت سے خدا بنا دیے تھے نا, وہ شرک کرتے تھے. اور آج کے دور میں بھی جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں جو کہ اللہ ان میں حلول کر گیا ہے, یا بعض جو ہے دیگر مذاہب والے لوگ जो है अंबिया को अल्लाह का बेटा कहते थे, अहले मक्का फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे, है ना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कोई बेटा बेटी तो है ही नहीं, तो लोगों ने अल्लाह के बेटे और बेटियां खुद से फर्ज करके उसकी इबादत कैसे कर ली, कैसे शुरू कर दी। वलम यत्तखिज वलदन, उसने किसी को बेटा नहीं बनाया। कोई हस्ती कायनात में ऐसी नहीं है जिसका अल्लाह से नस्ली ताल्लुक हो और जिसको अल्लाह ने अडॉप्ट कर लिया हो। तो जब नस्ली ताल्लुक नहीं है, अडॉप्शन भी नहीं है, तो फिर किसी को भी जो है वो माबूद बनने का उसको हक ही नहीं पहुंचता, है ना। तो ये मुशरिकीन मक्का भी क्या थे, जहालत पर थे कि फरिश्तों को, जिन्नों को या बाज इंसानों को अल्लाह की औलाद समझते थे और फिर उनको माबूद समझकर इबादत करते थे। इसी तरह आज के दौर में भी लोग ऐसा करते हैं। और आप देखें यहाँ पे अल्लाह ताला अपना तारुफ इतना खूबसूरत तरीके से करवा रहे हैं कि जो लोग ये समझते हैं ना कि फलां जो है वो अल्लाह का बेटा है या फलां अल्लाह की बेटी है और अल्लाह की पकड़ से मुझे बचा लेगा, है ना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वलम यत्तखिज वलदन, मैंने तो किसी को बेटा बनाया ही नहीं। अच्छा, फिर आप देखें कि दुनिया में भी औलाद जब इंसान की होती है तो इंसान अपनी औलाद से क्या समझता है, यही समझता है ना